अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान् न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणि निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् नारायणम्। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, का जगत आदि अंत और मध्य से रहित है। इसका अर्थ है जगत का आदि ऊर्ध्वम उत्कृष्टम जिसको कहा गया वह ब्रह्म तत्व ही है। इसका अंत भी वह ब्रह्म तत्व ही है। अतएव मध्य में भी उसके अतिरिक्त या कुछ पृथक से सत्य नहीं है। जो भी अध्यस्त होता है उसका मौलिक वास्तविक रूप अधिष्ठान ही होता है। अधिष्ठान की ही अध्यस्त के रूप में प्रतीति होती है। जगत न तो ब्रह्म के अंदर है न बाहर। अगर यह सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व के अंदर हो तो भगवत तत्व ओला आकाश के तुल्य सिद्ध हो, परंतु वह सदघन चिदघन आनंद घन है। उसे ब्रह्म कहते हैं। निरतिशयम यत बृहत तत् ब्रह्म, तो जगत उसकी सीमा का अतिक्रमण करके उसके बाहर अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव ब्रह्म ही जगदाकार उद्भासित होता है। जैसे कि रज्जु में हमको सर्प धारा माला भूछिद्र दंडादि की प्रतीति होती है, वह प्रतीयमान सर्पादि न तो रज्जु के अंदर होता है न बाहर। रज्जु घन ही सर्पादि के रूप में उल्लसित होता है। तद्वत् सदघन चिदघन आनंद घन ऊर्ध्व संज्ञक ब्रह्म तत्व ही जगत के रूप में उल्लसित या उद्भासित हो रहा है। जिस प्रकार तरंग माला का उदय स्थान निलय स्थान और विलय स्थान जल ही हुआ करता है, उसी प्रकार जगत का उदय स्थान विलय स्थान और निलय स्थान ब्रह्म ही है, वही वर्ण्य है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार एक वाक्य में ही जगत की मीमांसा पूर्ण हो जाती है। जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है। फिर से सुने, जगत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है। जगत का उपयोग जगदीश्वर के वर्ण में न कर जो इसे अहंता ममता का विषय बनाते हैं वे भटक जाते हैं। अतः भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान जो जगत है, या भगवत तत्व तक पहुंचाने के लिए भगवत तत्व के अधिगम के लिए है, इसके प्रयोजन को समझकर फिर व्यवहार साधना चाहिए। इसे भगवान ने अश्वत्थ कहा। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। वट पीपल और पाकर, पाकर को प्लक्ष कहते हैं, ये तीन वृक्ष अद्भुत जीवनी शक्ति से संपन्न होते हैं। लक्ष्य वनस्पतियों का राजा है, ब्रह्मा जी से संबद्ध वृक्ष है। वट भगवान शिव से संबद्ध वृक्ष है और अश्वत्थ जिसे पीपल कहते हैं भगवान विष्णु से संबद्ध वृक्ष है। निरुक्ति के आधार पर स्व कल भी टिकेगा जिसके संबंध में आस्थापूर्वक नहीं कहा जा सकता उसी का नाम अश्वत्थ संज्ञक जगत है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है, अतः वर्ण्य नहीं है। स्वतंत्र रूप से जगत को वर्ण्य मानना अनुचित है। अगर मान ही लें तो हाथ कंगन को आरसी किया, हम हो या आप, जो फल के रूप में हमको प्राप्त होता है उस पर विचार करना चाहिए। जगत की ब्रह्म रूपता बाद सामानाधिकरण की दृष्टि से है, स्वतः नहीं। स्वतः या कार्य कोटि का पदार्थ होने के कारण ब्रह्म से ठीक विपरीत लक्षणों वाला है। ब्रह्म है सत्य तो यह असत अनित्य या परिवर्तनशील है। ब्रह्म है चित तो यह अचित है। ब्रह्म है आनंद तो यह दुखप्रद है। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत असच्चिदानंद है तो इसके वर्म से हमको उपहार क्या मिलता है? मृत्यु का भय, मूर्खता और दुख। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, मरी हुई छुछुंदरी को कोई नाक से चिपकाकर चमेली जैसी सुगंध नहीं प्राप्त कर सकता तो अनित्य जग दुखप्रद शरीर और संसार का वरण करके कोई मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता। हमारी चाह का वास्तविक विषय मृत्यु से पारंगत अमृतत्व है। मूर्खता अज्ञान के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध चापों के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड आनंद है। इसका अर्थ जो हमारा तात्विक स्वरूप है वही हमारी चाह का वास्तविक विषय है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 2 में यह नियम निर्धारित किया गया, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। एक वस्तु शक्ति का वैभव या प्रताप होता है, दूसरा अज्ञान का वैभव या प्रताप होता है। दोनों का आकलन स्वस्थ चित्त से कर्तव्य है। कस्तूरी का जो मृग होता है उसके नाभि मंडल में कस्तूरी का निवास होता है तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, उसे इस तथ्य का बोध नहीं होता। लेकिन वस्तु शक्ति की महिमा के बल पर गंध शून्य इत्यादि का आग्रहण करके उसे सौरभ सुगंधि की प्राप्ति हो ही जाती है। लेकिन दूसरा अज्ञान का अपना वैभव होता है, रहस्य बोध न होने के कारण कि मेरे ही नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास है, उसका भटकना बंद नहीं होता। तो एक विचित्र तथ्य है कि अगर संसार को ही वर्णन करेंगे तो स्वरूप शक्ति की महिमा से हम मरेंगे नहीं और जड़ वस्तु के दृष्टा बन के ही रहेंगे और दुख के गर्भ से भी सुख निकाल ही लेंगे, तथापि हमारा भटकना बंद नहीं होगा। जब हमारी चाह का विषय सचमुच में हमारा तात्विक रूप ही है, अपने प्रति ही हमारा आकर्षण है, तो फिर अनात्म वस्तुओं का उपयोग और विनियोग तदर्थेखिल चेष्टितम के आधार पर सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा के परिमार्गन में करना चाहिए। जगत का आलंबन लेकर हम इसके आश्रय तक पहुंच सकते हैं, मन को पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह उपाधि है, उपव्याख्यान है, भगवत तत्व को प्रकट करने का संस्थान है, दार्शनिक धरातल पर इसका बहुत महत्व भी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वर्णन नहीं करने योग्य है। गाढ़ी नींद में मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से हम मुक्ति क्यों होते हैं? क्योंकि जड़ दुखप्रद नश्वर प्रपंच को लेकर, शरीर और संसार को लेकर अहंता ममता का उदय नहीं होता। तो या तो निरीक्षण और परीक्षण के बल पर तथ्य सिद्ध है। ऐसी स्थिति में गाढ़ी नींद में क्यों मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से अतिक्रांत हम होते हैं और जागर दशा में स्वप्न में स्मृति में मनोराज्य में क्यों मृत्यु के भय से विह्वल जड़ता के चपेट में पड़े हुए तीव्र तापों से संतप्त होते हैं? सीधी बात है, असच्चिदानंद रूप जगत में अहंता ममता उलिरने के कारण। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने विवेक चूड़ामणि में अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता को ही अध्यास माना है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा। हमको करना क्या है? लोकैषणा वित्तैषणा पुत्रैषणा इत्यादि अनात्म वस्तुओं में महत्व बुद्धि के कारण जो हम कामना पाले हुए हैं, वासना पाले हुए हैं, उसको शिथिल करने की आवश्यकता है, अब उच्छिन्न करने की आवश्यकता है। किसके बल पर? दुख दोषानुदर्शनम के बल पर। भगवद गीता के 13वें अध्याय में दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शनम शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने आप जगत में दुख और दोष का दर्शन नहीं होता, शास्त्र और सदगुरु के अनुगत होने पर दर्शन हो सकता है। मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्न का यह उत्तर दिया। तो दुख दोषानुदर्शनम, देव भाई पंडित जी को कोई आसन दो, बैठ नहीं पाते हैं। पंडित श्री राजा राम जी नारायण। तो हमने संकेत किया दुख दोषानुदर्शनम, विराज हाँ बैठे हो गया, उत्तर रखिए उधर रखिए, आचार्य ले लीजिए, नहीं तो चाहे बैठिए, नहीं बैठ जाइए ले लीजिए, बैठिए आपको कठिनाई ना हो। नारायण, वैज्ञानिक विचार की आवश्यकता है। यही उत्तरजिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात ब्राह्मण स्थिता। यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर भगवान ने जगत का स्वरूप बताया और साक्षात भगवत तत्व का स्वरूप बताया। निर्दोषम समम ब्रह्म, हम ब्रह्म का वर्ण क्यों करें? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ब्रह्म का परिमार्गन क्यों करें? क्योंकि निर्दोष और सम है, वरण करने योग्य कौन है जो निर्दोष और सम हो? परिमार्गन करने योग्य, अनुसंधान करने योग्य, अनुसंधेय विज्ञेय ब्रह्म तत्व क्यों है? क्योंकि निर्दोष और सम है। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है कि जगत वर्ण करने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि सदोष और विषम है। सीधी बात है, जो सदोष और विषम होगा उसका वर्ण करने पर दोष और दुख के चपेट से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो सनातन धर्म में जो दिनचर्या है उसके पीछे रहस्य क्या है? पंचभूत शरीराणाम सर्वेषाम सदसात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। महाभारत का यह श्लोक स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य। क्या नास्तिक भौतिकवादी प्रश्न की आक्षेप कर सकते हैं? उनका उत्तर भी उनके पास क्या है? बुरा न माने, हम लोग बहुत ही निर्भीक हैं गुरुओं की कृपा से। विश्व का नास्तिक कोई मुंह लगाने का साहस नहीं कर सकता। इसका मतलब इस ज्ञान में वह शक्ति है, पूरा विश्व है, हमको कहीं से चुनौती प्राप्त नहीं है। सब पलायन करते हैं, हम माने निश्चलानंद नहीं। यह ज्ञान विज्ञान जिसके पास है, पूरा विश्व हमसे डरता है, हम विश्व से नहीं डरते। क्यों? मालूम है कि सौ लुहार सुनार की तो एक लुहार की। मिथिला में कहावत है, सुनार क्या करेगा जेवर आभूषण बनाते समय? धीरे धीरे खटखट करेगा। लुहार एक ही बार जोर से मारेगा तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी। हमने क्या संकेत किया? क्यों? शास्त्र सम्मत वर्ण व्यवस्था चाहिए, इसके लिए पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया महाभारत में। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में इसकी व्याख्या में एक अध्याय है, महाभारत में पूरा एक अध्याय है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी के भाष्य में एक पंक्ति मिली थी 30-40 साल पहले, जिसका रहस्य यह था। एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति, अगर सनातन वर्ण व्यवस्था को शास्त्र सम्मत भेद को कोई स्वीकार नहीं करता है तो देहाध्यास की निवृत्ति, भगवत तत्व की स्फूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन हमको इसके लिए वचन चाहिए। भगवत पाद का वचन अपने आप में प्रमाण, और इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक चाहिए थी। तो एक श्लोक जब से मिला तब से बहुत प्रसन्नता है। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषाम सदसात्मनाम, अधिक से अधिक यही तो कह सकते हैं कि हमारे आपके सबके शरीर, पशुआदि के शरीर भी, वृक्षादि के शरीर भी, सांख्य योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार पांच भौतिक हैं। तो शरीर को लेकर तो फिर उत्कर्ष अपकर्ष की बात तात्विक धरातल पर उचित नहीं है। पंचभूत शरीराणाम, सर्वेषाम सदिशात्मनाम, आत्मदृष्टि से भी भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो न आत्मदृष्टि से भेद की प्रसक्ति है, न देह की दृष्टि से। फिर ये बवाल क्या है, अमुक ब्राह्मण अमुक क्षत्रिय, ये सब इसका उत्तर आगे दिया गया। पंचभूत शरीराणाम सर्वेशाम सदुषात्मनाम लोक धर्मे च धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। चुलबुली भाषा में इसका सारार्थ यह है, समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद आत्मा तक मन की गति का कोई और मार्ग नहीं है, यह तो याद रखना चाहिए। फिर से सुने, समग्र भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद ब्रह्मात्म तत्व में मनस्थिति का और कोई चारा उपाय नहीं है, नान्य पंथा विद्यते यनाय। हम विश्व को चुनौती दे रहे हैं शास्त्रों की ओर से, आप भेद भूमि का सदुपयोग करके दिखा दीजिए, आप भौतिकवादी हैं, संभव नहीं, वो विज्ञान ही नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार, मनवारी धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर वर्ण व्यवस्था को ताक पे रख दें, भेद भूमियों का सदुपयोग कर ले कोई, संभव नहीं है। अब भेद भूमियों का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद तत्व तक, ब्रह्मात्म तत्व तक मन की गति हो सके, संभव नहीं। तो न भेद का ये सदुपयोग कर सकते, न भेद का अतिक्रमण कर सकते हैं, इसलिए पूरा भौतिकवाद ठप, बिल्कुल पंगु है। फिर कर्तव्य की मीमांसा, कर्म की मीमांसा की चर्चा होती है, आप प्रवृत्ति को निवृत्ति बना के दिखा दीजिए। मनु महाराज से पूछे, निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति को निवृत्ति बनाने की क्षमता भौतिकवादियों में है ही नहीं, तो भारत को विलुप्त किया जा रहा है। हम एक संकेत करते हैं, चमगादड़, चीते, अजगर, शेर, वनस्पति, इन सब की प्रजातियों की रक्षा की चिंता विश्व स्तर पर की जा रही है, लेकिन श्रीमन नारायण से लेकर हमारे गुरुओं की परंपरा से हम लोगों तक जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, अगर यह सुरक्षित नहीं रहा, विलुप्त हो गया, तो इससे बढ़कर हानि विश्व की कुछ हो सकती है क्या? उसकी पूर्ति अरबों वैज्ञानिक के द्वारा, खरबों डॉलर के द्वारा संभव है क्या? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इसलिए से भारती कृष्ण त्रिजी महाराज जो वैदिक गणित के रचयिता हुए हैं, श्री गोवर्धन मठपुरी के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत के मनीषियों विशेषकर ब्राह्मणों को दायित्व क्या दिया, शास्त्रों के आधार पर, कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करना, समाधि भाषा में, और कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को परिष्कृत करना, विशुद्ध करना, ये दो दायित्व है। ये ब्राह्मण है चाहे हम संत वेश में है, हलवा पूरी खाने के लिए वेश नहीं है, मौज मस्ती के लिए ये जीवन नहीं है। भारत के मनुष्यों का मुख्य दायित्व क्या है? कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से, रितंभरा प्रज्ञा से भी ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करके समाधि दशा में उद्भाषित करना, प्रकट करना, और विकृत ज्ञान विज्ञान को परिष्कृत करना। तो हमने एक संकेत किया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व का परिमार्गण क्यों करें, प्रपंच में क्यों न रमे रहें? इसका उत्तर है, प्रपंच सदोष और विषम है, सदोष और विषम होने के कारण वर्णन करने योग्य नहीं है, ब्रह्म तत्व निर्दोष और सम है। तो फिर हमारा दायित्व क्या है? एक विजय प्राप्त करना, विजयाश्री प्राप्त करना। कौन सी विजयाश्री? यही वितर्जित सर्वो ये शाम सामने स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, उन्होंने जीवन काल में ही सर्ग का अर्थ यहाँ पुनर्भव या पुनर्जन्म, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन सदोष और विषम शरीर और संसार से कर्षित होकर निर्दोष और सम ब्रह्म में सन्निहित हो गया, इसीलिए ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुवरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। किसके बाद क्या करें, गीता का 15वां अध्याय आगे आएगा। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतंतोऽप्यपितात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा। गड़बड़ी कहाँ होती है, अकृतात्मा होकर ब्रह्मानुसंधान करते हैं, ब्रह्म का परिमार्गण करते हैं, कभी सफलता नहीं मिलेगी। अकृतात्मा होकर अचेतस होकर, इसका मतलब पहले ब्रह्मानुसंधान नहीं कर्तव्य है, पहले चित्त को शुद्ध और समाहित करने की आवश्यकता है, कृतात्मा होने की आवश्यकता है। लेकिन कृतात्मा हो गए, चित्त शुद्ध और समाहित हो गया, अब यत्न नहीं करते ब्रह्म परिमार्गन के लिए, कोई अभियान नहीं है, तो यतंतो योगिनः चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतंतः योगी माने जिनका चित्त शुद्ध और समाहित है, वो भी यत्न करें, तब यत्न करते हुए ही ब्रह्म तत्व का परिमार्गन संभव है। अगर वो यत्न न करें तो बस ठप। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतंतोऽप्यकृतात्मानः, और अकृतात्मा होकर ब्रह्मानुसंधान करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, दृढ़ता पूर्वक छेदन करके, राग द्वेष को शिथिल करके, वासना को शिथिल करके, बाद में उच्छिन्न करने की आवश्यकता है, उच्छिन्न करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों, तो राग द्वेष भी पालेंगे, ब्रह्मानुसंधान भी होगा, यह संभव नहीं। राग द्वेष को शिथिल करने या उच्छिन्न करने की विधा क्या है, कि क्यों वर्ण करने योग्य नहीं, इस दृष्टि से विचार करें तो स्वतंत्र रूप से प्रपंच कार्य प्रपंच वर्ण करने योग्य नहीं है। इसका वर्ण करने पर मृत्यु मूर्खता दुख उपहार के रूप में हमको प्राप्त होगा ही। पिछले सत्रों में हमने कहा भगवान शंकराचार्य जी का एक सूत्र है, फलावसानम जगत, फलावसानम जगत, जगत फलावसान है। आगे आ जाइए, प्रतिबंध थोड़े है। जगत फलावसान है, और सांख्य सूत्र है चिदावसान हो भोगा, चिदावसान हो भोगा, भोग चित्त पर्यवसायी होता है। फलावसानम जगत, भगवान ने ये जगत की संरचना की, इसमें दो प्रकार के फल हैं, एक प्रकृति प्रदत्त और एक परमात्मा की धारा से, परमात्मा की ओर से। प्रकृति क्या है, सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था, गीता के 14वें अध्याय के आधार पर कह रहा हूं। तो सत्व की परंपरा से सुख, वैषयिक, रजोगुण की परंपरा से दुख, तमोगुण की परंपरा से मोह, ये क्या है, प्रकृति के गर्भ से निकलने वाले फल हैं तीन ये। इसी पे हम लट्टू हैं, कभी सुख कभी दुख कभी मोह, कभी सुख कभी दुख कभी मोह। सांख्य तत्व कौमुदी में और भामती नामक ग्रंथ में वाचस्पति मिश्र जी ने कहा, एक स्त्री का उदाहरण देकर, अपने पतिदेव के सर्वथा अनुकूल है तो पति को सुख पहुंचाती है, सौत को दुख पहुंचाती है, उसकी उपस्थिति मात्र से सौत को दुख प्राप्त होता है। जो मनचला व्यक्ति उसे चाहता था लेकिन जिसे वह स्वप्न में भी सुलभ नहीं है, पतिव्रता जो ठहरी उसको मोहित करती है। उन्होंने कहा कि एक स्त्री के माध्यम से ही हमने पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया, प्रकृति का यही स्वभाव है, कभी सुख कभी दुख कभी मोह, ये तो प्रकृति की ओर से प्राप्त फल हैं। इन्हीं का वर्णन करते हुए अरबों खरबों कल्प बीत गए अनादिकाल से। दूसरा फल क्या है? वो ब्रह्म, उससे तो हम वंचित हैं, क्योंकि ब्रह्मानुभूति कहें, ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहें, या अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत ब्रह्म मात्र होकर अवशेष रहना कहें, मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणम व्यवस्थिति, यह फल है। वास्तविक फल तो ये है, जगत बना क्यों? अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्यन लक्ष्यते। जगत की संरचना का उपयोग प्रयोजन क्या है? जगत का उपयोग और विनियोग करें कहां? उस अधिष्ठानात्मक ऊर्ध तत्व के परिमार्गण में। इसलिए एक संकेत किया गया, ततः पदम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। पहले असंगता आनी चाहिए। असंगता के दो भेद हैं भाष्यों के अनुसार। पद्म पत्र मीमां भाषा, एक असंगता यह है, कमल के पत्ते पर पानी रखें, वो पानी कमल के पत्ते पर है लेकिन कमल का पत्ता उससे अलिप्त है। जगत को सत्य मानकर जो अलिप्तता संख्य प्रस्थान के अनुसार आती है वो इसी कोटि की होती है, लेकिन विषय असंग होना है उसका अस्तित्व तो है। दूसरी असंगता भगवत पाद ने यह लिखी कि मरुमरीचिका, मरुजल, मरुजल उससे मरुस्थल असंग है क्योंकि वो जल है ही नहीं। वेदांत प्रस्थान में पहले पद्म पत्र मीमां भाषा, इस कोटि की असंगता कर्मयोग के द्वारा लानी चाहिए। बाद में जिससे असंगता की बात कही जा रही है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, फिर क्या मतलब हुआ? असंगता की पराकाष्ठा, पहले धीरे धीरे असंगता। संग में दुख और दोष का अनुशीलन करेंगे तो असंगता का मार्ग प्रशस्त होगा। जिसके प्रति महत्व बुद्धि होती है उसके प्रति समर्पण होता है, जिसके महात्म्य का विज्ञान होता है उसके प्रति महत्व बुद्धि होती है, जिसके प्रति महत्व बुद्धि होती है उसके लिए जीवन समर्पित होता है, हम समर्पित होते हैं। तो महत्व बुद्धि उत्पन्न करने के लिए महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। अब तक क्या पाया और क्या खोया? सब कुछ खोया, कुछ भी नहीं पाया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अब असंगता की दृढ़ प्रतिष्ठा हो और फिर जगत से उपराम होकर मच्छर का काटना बंद हो जाए, कभी राग कभी द्वेष कभी शत्रु कभी मित्र, मैं उसे मिटा के रहूंगा तो मैं ये करके रहूंगा तो नीचा दिखा के रहूंगा, इस सबसे कुछ होना जाना नहीं, ये तो बच्चों का खेल है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गन करें उस पदार्थ का, तत्व का, पद का, पदनीय गमनीय जो भगवत तत्व है तुरीय संज्ञक, उसका परिमार्गन करें, अनुसंधान करें, परिता मार्गन करें, अनुसंधान करें, समारोह पूर्वक उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव आदि का विज्ञान प्राप्त करें। इससे लाभ क्या होगा? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको प्राप्त करके अर्थात जिसको आत्म रूप से जान करके, न निवर्तन्ति भूयः, ऐसे महानुभाव फिर पुनरावर्तन को प्राप्त नहीं होते, अर्थात पुनर्भव से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब अगर विचार करें चुलबुली भाषा में, हम आप आस्तिक हैं, अनादि काल से पूर्व शरीर को, जितने शरीर अनादि काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक जितने शरीरों को हम आपने सब बना दिया, उससे एक अधिक शरीर यह है ना, क्या उसमें एक जोड़ दें तो सभी शरीरों का ज्ञान हो जाएगा। अनादि काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक जितने शरीरों को हमने सब बनाया, पूर्व शरीर तक उनका दर्शन हो जाए तो करोड़ों ब्रह्मांड एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाए। इसका मतलब कृतार्थ होकर, निहाल होकर, तृप्त होकर अगर हमने देह त्याग किया होता तो हमारा जन्म क्यों होता? यम यम वापिस्मरण भावं त्यक्तंते कलेवरम तम तमेव इति कौन्ते या सदा तद्भाव भाविता। हमारा जन्म लेना हमारी दुर्बलता का द्योतक है कि अनादि काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ नहीं हुए। हम कोई श्री रामकृष्ण के अवतार नहीं है, दम्भ पूर्वक कहें कि हम अमुक के अवतार हैं। अवतार हैं, सब हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण के अवतार तो नहीं है, निरावरण ब्रह्म तो नहीं है। हमारा जन्म तो हमारी कमजोरी का नग्न स्वरूप है। अनादि काल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम कृतार्थ नहीं हुए, इसलिए हमको पुनर्भव की प्राप्ति हुई। तो जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद हो जाएगा। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये। वह पुरुष है, पुरुषायनात् पूर्णत्वाद्वा। पुरुष है मतलब पूर्ण है और साक्षात अपरोक्ष प्रत्येगात्मा है, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व का नाम पुरुष होता है। वह आद्य है, इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे प्राचीन है, सर्व कारण है, सर्वाधिष्ठान है, प्रकृति विकृति से अतीत है वह। ततः पदम तत्परिमार्जितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। ऐसी भाव करे, ऐसा भाव करे, ऐसी भावना करे वो जो आद्य पुरुष है उसके प्रति में प्रपन्नम। वह कौन है? यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। यह जो चिरंतनी प्रवृत्ति है उसी से प्राप्त है, इसका मतलब सृष्टि की धारा उसी से है, क्योंकि वह विवर्तोपादान है, अधिष्ठानात्मक उपादान है, उसी की माया शक्ति को लेकर इस सृष्टि की प्राप्ति है। सृष्टि वहां से झरती है, झरने से जैसे जल की धारा वैसे वहां से सृष्टि टपकती है। टपकती कब तक रहेगी? जब तक हम उस सृष्टा पुरातन पुरुष को आत्म रूप से वरण कर तदरूप होकर शेष नहीं रहेंगे। सृष्टि प्राप्त है, शरीर प्राप्त है, ये मन हमको प्राप्त है, कब तक प्राप्त रहेगा? कब से प्राप्त है? अनादि काल से मन प्राप्त है, महाप्रलय की दशा में विलीन होकर फिर सर्ग के प्रारंभ में हमारे साथ हमारा मन आ जाता है। मन के प्रयोजन की शांति कोई कर सकता है तो कर ले। मन का प्रयोजन क्या है? मन कब तक पुरुष के साथ रहेगा, हमारा आपका साथ देगा? ये मन है क्या? मन जीव का सखा है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। पंगी उपनिषद के अनुसार यहाँ पर मन के लिए ही वह है, क्षेत्र और सत्व का वर्णन है। मन हमारा आपका सखा है और सेवक है और शिष्य है, तीन संबंध हमारे मन के साथ हैं। ये सखा है, सेवक है और शिष्य भी है। इसके पीछे डंडा लेके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो यह है कि जब तक हमको विदेश कैवल्य नहीं दे देगा तब तक ये हमारा साथ नहीं छोड़े। पत्नी साथ छोड़ सकती है जो विवाहित है, सखा साथ छोड़ सकता है, शरीर साथ छोड़ सकता है, छोड़ भी देता है, मन नहीं साथ छोड़ेगा। तब तक ये साथ रहेगा जब तक अपने जीव को, शेषी स्वामी को कैवल्य मोक्ष न दे दे, तब तक ये साथ देगा। क्योंकि मन के प्रयोजन की निवृत्ति भौतिक विधा से संभव नहीं है। मन तब तक अनुगमन करता रहेगा हमारा आपका जब तक हम कैवल्य मोक्ष न प्राप्त कर लें। उसके बाद वह जीवन काल में चरम वृत्ति के रूप में रहेगा। फिर उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद परापुनि सिंधु मजारी। क्या अर्थ हुआ? आम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। उपनिषद में ही दोहरा महावाक्य एक जगह, उसी को भागवत में सुखदेव जी महाराज ने लिया है मूल में उपनिषद में। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये जो उलट पुलट कर महावाक्य का उपदेश है, यही अविद्या नगरी लंका को जलाने में समर्थ है। इस उलट पुलट महावाक्य की जो उलट पुलट ये प्रक्रिया है, उससे जो चरम वृत्ति की उत्पत्ति होती है, वो अविद्या और उसके कार्य को जला देती है। कूद परा पुन सिंधु मझारी, लेकिन वो चरम वृत्ति अगर शेष ही रह जाए तब उसी को लेकर द्वैत की प्रसक्ति हो जाएगी। उसको विलुप्त करने के लिए वृत्तियंतर माने तो कालक्रम से अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। तो विचित्र पहली है, अगर चरम वृत्ति को पाले रहे हैं तो उसी को लेकर द्वैत की प्रसक्ति होगी। महाशय जी के यहां भी जाना है। और चरम वृत्ति को वृत्यंतर से नष्ट करें तो वृत्यंतर को किससे नष्ट करें? आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक और अनवस्था दोष की प्रसक्ति होगी। इसलिए फिर स्वपर विरोधिनी है चरम वृत्ति। स्वपर विरोधी इसका मतलब गरम तवे पर पानी लिया तो छीटा मारा, उसकी गर्मी को शांत करके वो जल भी शांत हो जाता है, ये स्वपर विरोधी। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया उपल का, जी में उपल कृषि दल दल ही, उपल ओले पड़ते हैं खेती को नष्ट करके वो भी शांत हो जाते हैं, स्वपर विरोध। स्थावर वृत्त विष जंगम विष के द्वारा नष्ट होकर स्वयं भी शांत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद और एकादश स्कंद में उदाहरण है, दाह्य काष्ठ को भस्म करके आग स्वयं भी शांत हो जाती है। ये सब सात आठ उदाहरण हमारे पूर्वाचार्यों ने संकलित किया स्वपर विरोधी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चरम वृत्ति, चरम वृत्ति क्या चीज है? जयस्वामी कहते थे कोई काल विशेष में ज्ञान होता है क्या? फिर कहते थे वो तो मुझे हुआ नहीं, तो मैं तो अपने को ज्ञानी मानता हूं, जयस्वामी कहते थे। तो हम मुस्कुरा देते थे, बहुत ज्यादा उत्तर न देना ही ठीक है, मुस्कुरा ही देना ठीक है। चरम वृत्ति क्या चीज है? मोटरसाइकिल को मैंने देखा है और साइकिल जिसको आप कहते उसको भी देखा ही है। हमको पकड़ा दें तो हम इतनी दूर ले नहीं जा सकते, चलाने वलाने की बात तो बहुत दूर की बात। दिल्ली में पढ़े लेकिन पता था कि बाबा होना है, साइकिल चलाना नहीं सीखा। और इंडिया गेट के पास रहते थे लेकिन सिनेमा नहीं देखा, अब तो भगवान ना दिखा दे तो बाबा ही होना है, तो ये सब फालतू चीजें। लेकिन पेट्रोल हो और पैडल लगा गए, जिस पैडल के द्वारा मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए वो चरम पैडल है। कभी एक ही में हो जाए, कभी तीन तीन बार सर्दी के दिनों में जम जाए ना पेट्रोल आदि, तो तीन बार चार बार लगाने पर, हमने दूसरों को देखा है मुझे नहीं पता, वो चरम पैडल है। इसी प्रकार चरम वृत्ति एक सीताफल होता है, उत्तर प्रदेश है या यहाँ सीताफल, सीता लखनऊ की ओर कहते हैं, मीठा सब्जी बनती है इतना बड़ा पका हुआ। तो पुरी में उसके पौध लगाया था किसी ने, तो हमने देखा जो ग्वाला है वो फूल ही तोड़े जा रहा है। देखिए किसी से भी गाली, किसी से भी ज्ञान लेना बड़ा कठिन है। दत्तात्रेय जी की शैली में हम लिए बिना नहीं रहते, गाली सुन के भी ज्ञान लेते। हमारे शिष्य कहे जाते हैं, आजकल गाली की बौछार हम पे कर रहे हैं, गंदी स्वामी, थोड़ी भी मानवता होती बच्चे के समान यहाँ पाले गए रखे गए, अब हम ही गाली के पात्र हैं, हमको तो गाली वाली लगती नहीं। तो आजकल जिसके चार चेली चार चेले हो जाए वो गुरु, उसके लिए क्या है, बड़ा विकट समस्या, न नरक दिखे न कुछ। और हमसे टकराने का अर्थ होता क्या है, हम तो किसी से टकराते नहीं, हम तो सबका मंगल चाहते हैं। लेकिन जो भी टकराए, किसी का लोक तो नहीं बना, पर लोक क्या बना बने। हम एक संकेत किया, किसी को लुटेरा ना बनने दो, किसी को मरने ना दो, तो वह जल्लाद बन जाता है कलयुग की महिमा। खैर तो हमने उसे बुलाया कि भाई दो दिन हो गए तीन दिन हो गए, ये क्या करते हो, फूल ही तोड़ लेते हो सब्जी बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत घर में, 17 साल पहले की बात। तो बोलो फल कहाँ से लगेगा, अब मेरी मूर्खता थी मुझे क्या पता। तो गाली सुन के भी तो बहुत सा ज्ञान होते हैं ना, हम तो तैयार रहते गाली सुन के ज्ञान लेने के लिए, बहुत सा ज्ञान गाली सुन के ही लिया। समय हो गया तो उसने कहा महाराज दो प्रकार के फूल होते हैं इसमें, एक फूल वो होता है जिससे फल निकलते हैं, एक फूल होता है अपने आप मुरझा के समाप्त हो जाते हैं। हमको पहचान है, ग्वाले ने कहा हमको पहचान है कि जो फूल फल नहीं देते हैं उन फूलों को तोड़ के हम पकौड़ी बनाते हैं। हमने कहा भूल मेरी थी तुम्हारी नहीं। ऐसे कटहल होता है, कटहल का तो ज्ञान है, तुम कटहल का बाग था बचपन में, उसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। एक फल होता है जो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा, इतना 10-10, 20-20 किलो का हो जाएगा। एक फल वो होता है कि थोड़े समय बाद ना भी तोड़ो गिर जाएगा, हम बच्चे लोग उसको मोछ बोलते थे, तोड़ा खाया। तो कटहल में भी एक नकली फल एक असली फल लगते हैं, असली फल तो बढ़ के पक जाएगा धीरे धीरे, नकली फल। तो हमने एक संकेत किया, चरम वृत्ति में भी वृत्तियां कृत्रिम भी होती हैं, असली भी होती हैं। तो सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सु प्रकाशा तव भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। तो वो चरम वृत्ति फिर क्या करेगी, स्व पर विरोधी होगी और जीव को सदा के लिए निरावरण कर देगी। या जो मन है तब तक साथ देगा, इसको गाली दें चाहे कोसें, चाहे इससे व्यभिचार करावे, चाहे इससे भगवत तत्व का अनुसंधान करा दें, या शिष्य है, सेवक है, सखा है, इससे बढ़िया कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। क्या भगवत रूप तो आत्मा है ही, सबसे बढ़िया है। अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में अनुगीता, भगवान श्री कृष्ण का वचन। आख्यायिका सुनाई अर्जुन को, फिर अर्जुन ने कहा महाराज ये घटना कब घटी? उन्होंने कहा मैंने इतिहास नहीं सुनाया है, एक आख्यायिका अध्यात्म को बताने के लिए मैंने सुना दी। इसमें जो गुरु शिष्य का संवाद मैंने बताया उसका रहस्य बताया श्री कृष्ण ने। अहम गुरु महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में, हे महाबाहो अर्जुन मैं तो गुरु हूं, मेरा मन ही शिष्य है। मन को समझाने की विद्या तुलसीदास जी से बढ़िया अन्यत्र मिल पाना कठिन है। विनय पत्र, मन को कैसे समझावे, कभी धिक्कार कभी धन्यवाद, क्या दोनों देर, ये जितना तुलसीदास जी से सदा विनय पत्रिका में उतना सत पाना कठिन है। तो आज के प्रवचन का सारांश इस सत्र में दो ही प्रवचन यहाँ कर सके, लेकिन हमको अब संतोष है कि हमने बेईमानी नहीं की। शरीर तो शरीर है, ये तो गोविंदानंद जी, डॉक्टर गोविंदानंद जी हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, और सीमांत जी भी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो और विश्राम करें, लेकिन हमने कहा हमारा मन कोसेगा। अब इस बीमार शरीर को घसीट करके ही जब सब काम हो रहा है तो इसी पवित्र संस्थान को फिर क्यों, ऐसा नहीं, जब तक ये संस्थान चाहेगा तब तक हम, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये सेवा तो देते रहेंगे। और इस बार हमने रात्रि में बताया, चंडीगढ़ में ही हमको मालूम पड़ गया था कि वृंदावन में अब तक की हालत होगी, यहाँ भी जो एक दो स्वप्न हुए उससे लगा कि अब तक की हालत इस बार होगी ही, तो हम तैयार होकर चंडीगढ़ से ही आए थे। ये नहीं कि हम जनपत्र दिखाते हो या हमारे पास हो या कोई तांत्रिक मांत्रिक से संपर्क रखते हो, लेकिन पता लग जाता है। तो एक बार जब स्वामी जी से मिलने गए यहाँ, उन्होंने कहा जो न हो जाए वही कम है, जो न हो जाए वही कम है। हमने कहा आज कौन सा मंत्र आपने याद कर लिया? उन्होंने कहा राजा धीराज से संघर्ष करते हैं, जो न हो जाए वही कम है। हमने कही पहली क्या है? अरे आपको नहीं पता कलयुग राजा है, उसी से आप विरोध करते हैं। छोटे मोटे राजा से विरोध करने वाले की तो मिट्टी ठीक खाने हो जाती है। आप कलयुग से ही संघर्ष करते हैं, जो न हो जाए वही कम, जो न हो जाए वही कम। वो पता लगा लेते थे कि कहाँ कहाँ किस किस मोर्चे पर संघर्ष है, तो कहते थे राम राम दो दिन में हम लोग मर जाएं, इतने संघर्ष। तो संघर्ष के कारण तो नहीं कुछ, लेकिन चलो धारा दूसरी जगह चली जाएगी, अब आप लोगों को उसी से परहेज है जिससे राष्ट्र की रक्षा होनी। सन 72 से प्रवचन करते तो हो गए, बड़ी कृपा है, वो हमारी दृष्टि बहुत कमजोर है, शायद दो चार अवधूत सुखदेव जी यहां तैयार हो गए हों ब्रह्म विद्या सुनते सुनते, या शायद कोई क्रांतिकारी भक्त न इधर न उधर, जाता कहां है सत्संग, इस पर तो विचार करना चाहिए। ये मेरे लिए कितने कष्ट की बात है कि मैं वृंदावन में तो बोलता हूं, लेकिन ये मान के नहीं चलता कि आप श्रोताओं में से कोई एक कदम भी साथ देगा, क्योंकि आपका धैर्य जितना अडोल है उतना मेरा नहीं है। आप सब पचा लेंगे, पूज्यपाद महाराज जी फिर प्रकट हो जाए, फिर 25 साल सुनावे, उनको सुनते सुनते सब पचा लेंगे, आप पे कुछ आश्चर्य ही है। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साध रहे बलवाना, बुरा मत माने, एक संस्मरण नहीं कहना चाहिए, फिर कहता हूं नवरात्र के दिन थे यही जो अभी बीते, और नीचे तिब्बिया कॉलेज में मैं रहता था दिल्ली में, नीचे गढ़वाली ब्राह्मण लोग अपनी मंडली बनाकर रामलीला करते थे नवरात्र में, मैं कोई उनका दर्शक या श्रोता नहीं था, तीसरी मंजिल नीचे, मैं सबसे ऊपर रहता था। मैं कोई अपनी पहेली सुलझा रहा था, पहेली मतलब ग्रंथ की, और छत पे घूम रहा था, नीचे लीला हो रही थी, न मैं श्रोता न दृष्टा, लेकिन माइक के कारण करुण क्रंदन की आवाज आई, शरीर स्तंभित हो गया। अनुमान लगाया कि कौन सी लीला होती होगी, तो भगवान राम बलकल वसन धारण करके वन की ओर जा रहे हैं, दशरथ जी विलाप कर रहे हैं। अब मैं न तो प्रत्यक्ष कोई श्रोता था न दृष्टा, सच्ची बात यह है, जन्मभूमि तो छोड़ा जो आध्यात्मिक लक्ष्य उसकी की दृष्टि से, फिर दिल्ली जो छोड़ा इस वेश में आए, उसके पीछे रास यही है। इसलिए हमको विश्वास है घर छोड़ते समय जो संकल्प होता है आगे होता है, चाहे ध्रुव जी का हो, चाहे वो विभीषण जी का हो, फिर निष्कामता की डीन हाँकते रहो, बात चलती नहीं है क्या, वो तो अकाट्य प्रारब्ध बन जाता है। घर छोड़ते समय जो संकल्प होगा वो तो पूरा होगा, वो तो अकाट्य हो गया है। अब जितना भी भजन कीजिए वो पहले पूरा होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो मन में क्या संकल्प आया, मेरे प्रभु राम प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के लिए स्वयं को 14 वर्षों के लिए वनवासी बनाने जा रहे, लीला की दृष्टि से। तो मैं क्या करूं महामूर्ख, मुझे क्या व्रत लेना चाहिए, तो मैंने उसी समय व्रत लिया, अंतिम सांस तक सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहूंगा। बस सबके लाडले प्यारे थे, चुपके से निकल गए दैवयोग से, मैं शंकराचार्य के पद पर हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य वही है। वो लक्ष्य पूरा हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जिस कामना को लेकर चला था वो मेरी कामना भगवान राम की दी हुई है, तो कौन उसको मिटा देगा। भगवान राम ने 14 वर्ष प्रकृति पार है, उनको क्या गर्व थी, उन तक कौन कष्ट की पहुंच थी, हमारे लिए इतनी यातना सही, तो हमारा क्या कर्तव्य है। हम तत्काल व्रत हुआ लिया ये नहीं कह सकते, भगवान के पास है पूरा जीवन अंतिम सांस तक सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए बोटी बोटी गलाऊंगा। दैवयोग से मैं शंकराचार्य के पद पर हूं, लेकिन भोक्ता नहीं पद का, हर जब तक बेहोश न हो जाऊं, मूर्छित न हो जाऊं या सो न जाऊं, भारत की अखंडता मान बिंदु की रक्षा के लिए ही मैं व्यूहरचना करता रहता हूं। एक दो व्यक्ति को भी वेदना व्यापे, ऐसा नहीं कि यहां नहीं है, और जगह तो है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, होगा ही। रात में मैं कुछ चिंतित हुआ कि पुजूरियाबाजी का आश्रम बुलडोजर न चल जाए, जैसा कि मैंने सुना होटल बनने की योजना मैंने सुनी, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, बेहोशी जैसे आ गई। इनको बुलाया सचिव जी को, वो तो नहीं कहा कि मैं मूर्छित हो रहा हूं, कि वो पवित्र संस्थान वहां बुलडोजर चल जाएंगे। जबरदस्ती ट्रस्टी लोग बने हैं, कोई अधिकार नहीं, वो लोग अपने करोड़ों रुपए कमाने के लिए होटल बनाएंगे, पुजूरियाबाजी महाराज के संस्थान को होटल का रूप दिया जाएगा। पुलिस गुंडों से आक्रमण परसों रात में वहां पर करवाया गया था, ऐसा हमने सुना है, और बंदूक के बल पर सबको भगाया जा रहा है, और बाद में वहां पर बुलडोजर चलेगा, सब आश्रम तोड़ दिए जाएंगे। ये वेदना तो मैंने नहीं बताई, लेकिन इन्होंने कुछ कहा, तब मुझे मेरी बताई हुई बात का आश्वासन इन्होंने दिया, मैंने अपनी वेदना नहीं बताई, तब जाके कल कुशल नींद आई। तो हमने एक संकेत किया, ये सब पवित्र संस्थान, हमने एक बात कही कि जिस उद्देश्य से ये संस्थान होने चाहिए मान बिंदु की रक्षा के लिए, उसके लिए उपयोग नहीं करेंगे, मैं शाप नहीं दे रहा हूं। उरियाबाजी के ट्रस्टियों को मैंने 6 साल 5 साल पहले चेतावनी दी थी, एक एक ट्रस्टी एक एक कमरा बांट लेगा और सब बाबाओं को भगा के मार के पीट के अंत में बेच देगा, आप लोग नहीं सावधान होते, तो लोग चाहते यही थे। हमने एक संकेत किया, वो भगवान नहीं रहने देंगे संस्थानों को, क्यों? अरे भाई ये आदि शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की, किस उद्देश्य से की? 10 करोड़ बैंक बैलेंस कर दो, खाते पीते रहो, इस उद्देश्य से की? शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की विदर्भियों का, कि दाल न गले, इसीलिए की ना, और जागरूक सन्यासी अलग जगाते रहे, इसलिए थोड़े की कि हमारे मठ में 4 करोड़ 10 करोड़ बैंक बैलेंस हो जाए, 10-20 गाय रह जाए, 2-4 बाबा लोग खाते पीते रहे, आ गए उत्सव हो गया गुरु पूर्णिमा आदि का, इस उद्देश्य से थोड़े जिस भगवान आदि शंकराचार्य का शाप लग जाएगा, इस उद्देश्य से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जीवन का मठ का उपयोग नहीं करते हैं तो होटल बनाने वाले सब जगह है, कल्पना नहीं कर सकते कब किस संस्थान को होटल बना के खा जाए। इसलिए हमने एक संकेत किया, सज्जनों सावधान, हर हर महादेव, चलंतु समय अगला।